नमो सिद्धानं नमो आययान नमो वर्षायान नमो लोई सवसाहु तीन भुवन के मुकुटमनि गुणानंतमय शोर नमो सिद्ध परमात्मा वीतराग अविरुद्ध। सर्वज्ञ भगवान के वाणी के अनुसार जो यहाँ आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की है उसी के आधार से हम यहाँ तीन लोक का स्वरूप देख रहे हैं। अभी अभी आपने देखा था कि ये धर्म ध्यान में संस्थान विषय नाम का जो धर्म ध्यान है तो मुनिराज भी इसके स्वरूप का चिंतन करते हैं, क्योंकि इसमें जानने में तो कोई राग द्वेष की उत्पत्ति तो होती नहीं है और वितरागता के सहित किसी एक चीज को एकाग्रता से जानते हैं। उपयोग सूक्ष्म होता है तो उपयोग की सूक्ष्मता और एकाग्रता इम्पोर्टेंट है। राग रहित होकर किसी पदार्थ को एकाग्रता से जानते हैं और वहां से उपयोग हटकर अपने आत्मा पर आ जाता है तो उसको संस्थान विषय कहा। यहाँ पर भी हम उसी ये त्रिलोक की बात यहाँ हम देख रहे थे। हमने यहाँ जम्बूद्वीप के बारे में कुछ बातें देखी थी और भी थोड़ा कुछ अलग हम देखेंगे। हमने देखा था कि जम्बूद्वीप में ये एक दो तीन और ऊपर भी एक दो और तीन ऐसे जो पर्वत है, छह पर्वत है, उसके कारण सात क्षेत्र बने हैं। क्षेत्र को वर्ष भी कहते हैं, आपने सुना होगा भारत वर्ष, तो क्षेत्र को वर्ष कहते हैं। और ये क्षेत्र जिन पर्वतों के कारण होते हैं उन पर्वतों को वर्षधर पर्वत भी कहते हैं। वर्षधर पर्वत, एक तो इन पर्वतों का नाम है कुलाचल पर्वत, ये छह है, छह कुलाचल पर्वत है। देखो ये पर्वतों के नाम यहाँ लिखे है, यहाँ पूरे ये पर्वतों के नाम लिखे है। ये यहाँ ऊपर का शिखरी है, रुक्मी है, नील है। नीचे से देखेंगे तो यह हिमवान पर्वत है, ये दूसरा ये महाहिमवान है और ये निषद पर्वत है। अब ये पर्वतों के क्यों फिर दोबारा ये बात उठाई, तो हर एक पर्वत पर एक एक कुंड है। आप यहाँ जो हिमवान का वो बहुत छोटा है उससे डबल यहाँ महाहिमवान पर है, उससे भी डबल यहाँ ये निषद पर्वत पर है। इन कुंडों के यानी कुंड नहीं वो सरोवर है एक्चुअली, उसको हृदय भी कहते हैं, द्रह भी कहते हैं। द्रह यानी सरोवर, इसी का दूसरा नाम है क्या, हृदय। इसका अर्थ होता है सरोवर। तो ये छोटे है यहाँ के हिमवान, उसका नाम है पद्म सरोवर, उससे दो गुना ये महापद्म सरोवर ऊपर के पर्वत पर। यहाँ निषद पर्वत पर जो है उसका नाम है सिगिंस सरोवर। ऊपर से देखते हैं तो यहाँ शिखरी पर्वत पर पुंडरिक नाम का सरोवर है, रुक्मी पर्वत पर महापुंडरिक है, वो इससे दो गुना है, और नील पर्वत पर ये केसरी नाम का है। अब इनसे क्या क्या होता है उसकी बात देखते हैं कि इन सरोवरों से महानदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ इन क्षेत्रों के बीच में से बहती है। नीचे की ओर हम देखते हैं भरत क्षेत्र के ऊपर यहाँ जो हिमवान पर्वत है और यहाँ जो पद्म ग्रह है उसमें से तीन नदियाँ निकलती हैं। ऊपर भी है, हाँ वहाँ पर भी तीन नदियाँ निकलती है। मैं इसको बताऊंगी फिर हम वो भरत क्षेत्र में जाएंगे इसके पश्चात और वहाँ वो नदियों की बात निकले देखेंगे विस्तार से। तो अच्छा वो निकालना आपके चार्ट में देख लेना, हाँ छह नंबर देखो आप उसका बोर्ड पर भी लगाओ, तब तक आप छह नंबर का चार्ट अपने पुस्तक में देखना, पांच के इसी पेज पर। उसमें पद्मद्रह दिखाई दे रहा है ना, उसमें से तीन नदियां निकली है, एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर बह रही है। हाँ यहाँ देखो भरत क्षेत्र का ऐसा एक्चुअल ऐसा है लंबा, ये पीला पट्टा केवल भरत क्षेत्र है और उसके ऊपर जो पर्वत है उसके बीच में भी यहाँ ये पद्म सरोवर है। तो ये जो पद्म सरोवर है ऐसा 500 ऐसा हजार योजन वाला है, उसके ये पूर्व द्वार से गंगा निकलती है, पश्चिम द्वार से सिंधु निकलती है, और ये ऊपर की ओर भी निकलती है, ऊपर के क्षेत्र में जाकर बैठती है। इसकी बात हम वो दूसरे चार से देखेंगे। आपके सामने पुस्तक में देखना जरा, ये जो पद्मद्रह से तीन नदियां निकली है ना, वो आपके चार्ट में बराबर अच्छी तरह से दिखेंगी। पांच नंबर का देख लो, देखो पद्म से नीचे भरत में गंगा सिंधु निकली है और ऊपर एक लाइन दिखाई देगी, वो लेफ्ट साइड को बहती है। यहाँ जो ये ऊपर की निकली ना, ऊपर की नदी यहाँ, हाँ तो नहीं नहीं वो तो रोहित रोहित अक्ष है, ये ऊपर, वो मैं फिर अब पहले चार्ट में बताऊंगी। ये ऊपर जाके ऐसे ऊपर के क्षेत्र में बहकर इधर चली जाएगी, पश्चिम की ओर चली जाएगी। हम यहाँ अभी पहले गंगा और सिंधु को देखेंगे और बाद में ऊपर के नदियों की भी बातें देखेंगे। तो ये गंगा नदी निकलती है, यानी हरेक इसमें इस कुंड में से तीन निकली, बाकी जो ऊपर के जो सरोवर है उसमें से दो दो ही निकलेगी। नहीं समझे, ये पहले वाला चार्ट लगाना है। हाँ, अभी नाम तो वही है परंतु उसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो उसको बहुत बड़ा डायमेंशन है, क्योंकि ये गंगा और सिंधु नाम इतने कॉमन है कि विदेश क्षेत्र में भी है, या तो गंगा सिंधु नाम है या वो रक्ता रक्तोदा नाम है, ये दो ही नाम सर्वत्र वही के वही लिखी थे। नहीं, अभी देखो यहाँ ये गंगा सिंधु है और ये ऊपर एक नदी निकली है। अब यहाँ बहुत बराबर क्लियर नहीं दिख रहा, ये इधर कहती है ये बाजू। अब ये वाला जो महापद्म है उससे नीचे की ओर निकली नदी इधर गई, ऊपर की ओर गई वो इधर गई। ये तिगिंच जो सरोवर है ये निषद पर्वत का, यहाँ से एक दक्षिण की ओर आई और वो पूर्व की ओर बह गई, उत्तर की ओर गई मेरु पर्वत को एक क्वार्टर प्रदक्षिणा लागी उसने 1/4, और लेफ्ट साइड यानी पश्चिम की ओर गई। ऊपर के सरोवर से नीचे आई है पश्चिम की ओर, इसको प्रदक्षिणा दिया, ये सीता नदी इधर तक है। यहाँ से ऊपर की ओर बहेगी ये यहाँ चली जाएगी, ऊपर के सरोवर से नीचे आएगी यहाँ चली जाएगी, यहाँ से ऊपर की ओर चली जाएगी फिर पश्चिम में। और जैसे भरत क्षेत्र में हमने देखा था ये सरोवर में से तीन नदियाँ निकली थी ना यहाँ से, ऐसे यहाँ से भी तीन निकलती है, एक नीचे आती है यहाँ जाती है, और ऐरावत क्षेत्र में भी रक्ता और रक्तदा ये दो नदियाँ होती है ऐरावत। भरत क्षेत्र की कौन सी थी? गंगा सिंधु, और ऊपर की रक्ता रक्तदा। अब इन सरोवरों की थोड़ी विशेषता देख के है फिर हम गंगा सिंधु की ओर बढ़ेंगे। तो क्या विशेषता है उसको हम देखेंगे। नहीं नहीं, चार्ट अभी लेने दो। हमने हर एक सरोवर के नाम अपने यहाँ देखे है, पर्वत के आगे ब्रैकेट में सरोवरों के नाम लिखे हैं, और जिस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती है उस क्षेत्र के नाम और ब्रैकेट में नदियों के नाम बताए। अब यहाँ आना, अपना पेज निकालना आपका, बैठ जाओ मिहिर। हाँ, पेज नंबर है 141। यानी जो हमने दो दो नाम लिखे ना, गंगा सिंधु, ये देखो ये गंगा सिंधु, रोहित रोहित आख्या, हरित हरिकांता, फिर ये सीतोदा इधर की है और सीता इधर की है, यानी सीता सीतोदा। तो उसमें पहले नाम वाली नदियाँ पूर्व दिशा में गई, ये जो जोड़ी जोड़ी में से जिसका नाम पहला दिया है वो पूर्व है, ये यानी इस ओर से बहती है सर, और जिसका सेकंड नाम लिया है सिंधु वो इधर चली जाएगी, ये पश्चिम की ओर सारी बहने वाली नदी है। सेकंड नाम जिसका लिया जाता है वो पश्चिम की ओर बहती है सभी नदी। हाँ, नहीं नहीं, ये क्षेत्र है पूरा, ये हरित क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उसमें से ये हरित और हरिकांता दो नदियाँ बहती हैं, हाँ पूरा पूरा ये हरी क्षेत्र जितना पिंक कलर बताया, और नदी के कारण उसके ऐसे विभाग हो गए जैसे हमने यहाँ विदेह क्षेत्र में देखा था। देखो ये नीचे से यहाँ से नदी आई पश्चिम की तरफ, तो इसका नाम है सीतोदा। ये ऊपर से बहकर आई, यहाँ चली गई और यहाँ ये सीता नदी, और इसके कारण विदेह के दक्षिण उत्तर ऐसे दो भेद हुए थे। पश्चिम विदेह में भी दक्षिण उत्तर दो भेद हुए थे। क्यों? ये बड़ी नदी बीच में बहती है उसके साथ। यहाँ तक बात ख्याल में आई? ये छह पर्वत है, हर एक पर्वत पर एक एक सरोवर है। नीचे से ऊपर हम बढ़ेंगे तो पहले सरोवर से दूसरा दो गुना, तीसरा उससे दो गुना। ऐरावत की तरफ से देखेंगे तो भी ऐसा ही। अब इसका हम इसको 141 पेज निकालना। नीचे का पैराग्राफ। अब इन पर्वतों की ऊंचाई और उसके अनुपात में, यानी पर्वतों की चौड़ाई भी अलग है, ऊंचाई भी अलग अलग है, और उसके ऊपर जो सरोवर है उसके भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई वो सब ऊंडाई अलग अलग है। तो उसमें क्या क्या है? तो सरोवरों में तो पृथ्वी का एक कमल है। कमल तो हम हमारे तो फूल वनस्पति का एक है, परंतु वहां कहेंगे हम कमल, परंतु वो क्या है? रत्नमयी है, पृथ्वी का एक रचना है। पृथ्वी का एक अर्थ समझते हैं? ये रत्न हीरे माने क्या है? पृथ्वी का एक है ना, वहां से तो जीव निकल गए परंतु वो पृथ्वी का एक है। तो यहाँ पृथ्वी का एक ऐसे कमल उन सरोवरों में पाए जाते हैं। उसकी भी ऊंचाई और चौड़ाई देखेंगे, यानी जो पर्वत है उसका जो सरोवर है उसमें जो कमल है उनके भी अलग अलग डायमेंशंस है। छोटे सरोवर है उससे दो गुना आगे वाले है, उससे दो गुना आगे वाले है, तो उसमें वो सरोवरों की भी लंबाई चौड़ाई ऊंडाई अधिक होगी और वो कमलों का भी साइज बड़ा होगा। पर्वत की ऊंचाई से ग्रह की चौड़ाई 5 गुना होती है, लंबाई 10 गुना होती है और ऊंडाई 10वें भाग प्रमाण होती है, और कमल की ऊंचाई और चौड़ाई ग्रह के ऊंडाई के 10वें भाग प्रमाण होती है। अब ये समझने के बदले चांद देखेंगे तो आसान होगा, इसलिए इस सबको चार
सरोवर,
ग्रह कहो, हृदय कहो या सरोवर कहो, एक ही बात है। तो 142 पेज पर इसका एक चार्ट बनाया है। देखो ऊपर पर्वतों के नाम लिखे हैं, जो हमने नीचे से ऊपर देखे थे, हिमवान, महाहिमवान और निषद। ये देखो यहाँ लिखा है ना हिमवान, ये भर क्षेत्र के ऊपर वाला एक केवल लाइन है वो हिमवान, फिर ये महाहिमवान, ये यहाँ तक यहाँ फैला हुआ ये महाहिमवान, और ये निषद इतना, फिर ये ऊपर निषद जैसा यहाँ पर है वो नील पर्वत, उसके ऊपर रुक्मी पर्वत और अंत में शिखरी पर्वत, छह हुए ना। तो देखो दोनों साइज, दोनों साइड के जो है आप टेबल में देखना, हिमवान और शिखरी इनके डायमेंशन इसका इनका साइज समान है, महाहिमवान और रुक्मी उनके भी साइज समान है, निषद और नील इनका समान है। देखो पर्वतों की ऊंचाई सेकंड लाइन में देखो, 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, ऐसे ही राइट साइड से देखो 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, समझ में आ रहे हैं ना बात? इनके कलर भी अलग अलग है पर्वतों के वर्ण, तो हिमवान सुवर्ण के समान है, महाहिमवान चांदी के समान है, निषद तप्त सोने के समान है, नील है नाम के जैसे वैडूर्य मणि के समान है, रुक्मी चांदी के समान है और शिखरी सोने के समान है। ये पर्वतों की ऊंचाई हुई। अब उन ग्रहों के नाम यहाँ लिखे हैं, देखो पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, और वो ग्रह की चौड़ाई कितनी है वो यहाँ बताई है 500 योजन। अभी उसके नीचे हम केवल हिमवान के ऊपर देखते हैं, पद्म ग्रह की चौड़ाई 500 योजन, लंबाई 1000 योजन, ऊंडाई 10 योजन, उसमें जो कमल है उसकी ऊंचाई 1 योजन, और वहां की देवी का नाम है श्री। अभी हम हर एक के पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, वो उसके के अनुपात में बढ़ेंगे और दूसरी ओर से फिर कम होंगे। हाँ ये देवियों के हम नाम पढ़ेंगे, क्रम से आपने तत्कार सूत्र में भी पढ़े होंगे इसके नाम। देखो क्या है, श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये इन देवियों के नाम है। और उन वो सरोवरों में जो मेन कमल है वहाँ उनका रहने का ठिकाना है। परंतु उस रहने का ठिकाना भी कैसा डिस्क्राइब किया, जरा पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। ये टेबल के नीचे पढ़ेंगे, ये कमल अत्यंत सुगंधित होते हैं, है पृथ्वी का एक रचना, फिर भी अत्यंत सुगंधित होते हैं। इतना क्यों हंसी, पेपर आजकल ये तो आते ना शादी के कार्ड, अरे इतना सुगंध हो तो कभी कभी एलर्जी आती उसकी। इनके सुगंध द्वारा दशो दिशाएं सुगंधित होती है। वैडूर्य मणि यानी नील मणि से निर्मापित इनकी ऊंची नाली होती है, नाली समझते, हाँ उसका जो नीचे का जो देठ संभरा कहते तो क्या कहते गुजराती है, ताल की, हाँ हाँ मुश्किल, हाँ यानी ये नील मणि से बनी हुई है। इसके 11,000 पत्र होते हैं, पांखुड़ी कमल की पांखुड़ी है, कितनी है, एक एक की 11,000। कमल एक योजन का है यानी चार कोस वाला, वहाँ वह जल से आधा योजन ऊपर यानी उसके नीचे है ना, उसकी स्टेम है तो जल के लेवल के ऊपर आधा योजन जाके ऊपर वो स्थित है। विकसित कमल के फूल के समान होता है, परंतु वह वनस्पति कायिक नहीं है, यानी वो फूल जो हमारे वनस्पति कायिक है वैसे वो नहीं है, पृथ्वी कायिक रत्नमयी है। उसका मृणाल यानी केसर, केसर समझते, उसमें से जो अंदर से इसे फूल के अंदर, हाँ तो तीन कोश मोटा रुप्यमय श्वेत वर्ण का है, एक कोश उदय व्यास वाली उसकी कर्णिका होती, कर्णिका यानी सेंटर का, एक तो होते पंखुड़ी और सेंटर में कमल के जो होगी की वो उसको कहेंगे कर्णिका। उसके ऊपर श्री देवी का मंदिर, पहले श्री लिखे ना, हिमवान पर्वत के ग्रह में श्री नाम की देवी रहती है, तो उस श्री देवी का मंदिर, मंदिर यानी महल, मंदिर यानी यहाँ देवियों के मंदिर होते वैसा नहीं, हाँ देवों के रहने के उनके जो मकान यानी महल होते हैं उसको मंदिर कहते हैं। एक कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा और पौना कोस ऊंचा होता है। उस ग्रह में कमल के परिवार रूप 140,115 अन्य कमल होते हैं। ये अन्य छोटे छोटे कमल है उसको क्या कहा, ये कमल का परिवार, अन्य कमलों के वहाँ समूह है, ये छोटे हैं।
ये परिवार है में बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे
वो नहीं है, हाँ उन कमलों पर देवियों का परिवार रहता है। अब देवियों का परिवार में क्या क्या लिया, देखो कि उन देवियों के भी पारिषद, अनिक, सामानिक, अंगरक्षक आदि देवों के मंदिर है, उनके भी अभी वो देवियां हैं तो उनके भी सबॉर्डिनेट बहुत सारे होंगे कि नहीं। श्री री और धृति ये कहाँ की है, ये श्री यहाँ रहेगी, ये रीम और ये धृति ये सौधर्म इंद्र की देवियां हैं, और ऊपर की ये तीन कौन सी है, कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये ईशान इंद्र की देवी, हमने देखा दक्षिण की और उत्तर की, ऐसे उनकी ये तीन है। तो जो ऐसे हमने ये छह कुलाचल देखे, उनके ये ग्रह देखे, उनकी नदियां देखी, नदियों के कारण क्षेत्र में पूर्व पश्चिम बहती है, ऐसा ही आगे के धात की खंड में पूर्व धात की, पश्चिम धात की, पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम उत्तरार्ध, पुष्करार्ध, सब जगह ऐसा ही होगा। उसकी रचना हम कल हमने देखी थी, उसमें याद है कि भूल गए, याद है ना, देखो आपके पास जो पुस्तक है ना वहाँ देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय पर। जो चार्ट नंबर चार था हाँ, उसमें बीच में तो पीला डॉट है, वो तो जम्बू द्वीप है चार नंबर, और उसके आगे वाला है वो धाकी खंड है समुद्र के बाहर के ओर, जहाँ ये सारी रचनाएं दिखाई है। हाँ देखो देखो, अभी हमने यहाँ पर सारी रचना देखी जम्बू द्वीप में, अभी यहाँ देखते हैं। तो यहाँ इधर से शुरू होता है इश्वाकार, तो ये पीला इधर है वो भरत क्षेत्र है, उसके ऊपर ये हिमवान पर्वत होगा, फिर उसके ये नदियां निकलती है, आगे का जो पर्वत है महाहिमवान है, उसके आगे का वो निषद है, ये सारी जो ब्लू लाइंस बताई ना वो सारी नदियां है, और वो हर एक क्षेत्र में ऐसी बहती है। यहाँ की नदियां अंदर की ओर तो लवण समुद्र में मिलेगी और बाहर की ओर कालोदरी समुद्र में मिलेगी। लवण समुद्र में तो जम्बू द्वीप की सभी नदियां दोनों ओर लवण समुद्र में मिलती थी, यहाँ तो उसके एक बाजू तो एक समुद्र है अंदर और दूसरी बाजू दूसरा समुद्र है। यहाँ पे देख लेगा अभी इसकी जो ये नदियां है यहाँ तक जाएगी और ये कालोदधि समुद्र में मिलेगी और ऊपर से बहकर आएगी और इधर मानुषोत्तर पर्वत से द्वीप में चली जाएगी, यही इसमें डिफरेंस है। अब ये हम साधारण हमने इसका विस्तार देखा है, अब यहाँ हमें गंगा नदी की बात देखनी है थोड़ी विस्तार से, इसलिए भरत क्षेत्र का जो हमने चार्ट अभी पहले लगाया था उसी को फिर दोबारा देखेंगे छह नंबर का। हाँ देखो, ये हिमवान पर्वत है हमने देखा इधर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिमवान पर्वत ऐसा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और उसके ऊपर ये सेंटर में ये पद्मद्रह यानी वो सरोवर है। तो ये हिमवान पर्वत के ऊपर ये जो सरोवर है तो ये इसकी ऐसी 500 योजन चौड़ाई है और ऐसा 1000 योजन इसका ऐसी लंबाई है। अब इसके पूर्व में यह वज्र का एक द्वार है और उसमें से ये गंगा नदी ऐसी इधर से बहती है, पूर्व की ओर बहती है फिर यहाँ मुड़ जाती है, तो उसका वर्णन ऐसा किया है कि 500 योजन तक ये पूर्व में बहती है, फिर यहाँ कोई गंगा नाम का कूट है वहां से ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है। यहाँ शायद आपको ये कुछ ऐसा ऐसा तिरछा कुछ दिखता है, तो ये क्या है उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 144 पर है, नीचे का पैराग्राफ। सर्वप्रथम हम गंगा नदी की उत्पत्ति एवं उसका गमन देखते हैं। हिमवान पर्वत पर दक्षिणोत्तर 500 योजन चौड़ाई वाला और पूर्व पश्चिम 1000 योजन लंबाई वाला पद्मद्रह, जो मैंने अभी आपको बताया था वहाँ, उसके पूर्व दिशा में वज्रधार में से गंगा नदी निकलती है और हिमवान पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन तक बहती है। देखो हमने यहाँ देखा ये पूर्व द्वार, ये सरोवर का ये पूर्व द्वार, यहाँ से 500 योजन तक ऐसी बहती है, कहाँ पूर्व की ओर। हिमवान पर्वत पर गंगा नाम का कूट है, कूट यानी पर्वत शिखर है कोई, यहाँ गंगा नाम का, उसका आधा योजन पहले ही गंगा नदी दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर हिमवान पर्वत के दक्षिण तट तक बहती चली जाती है। देखो ये यहाँ मुड़ गई नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ गई और यहाँ से ये हिमवान पर्वत का एज है, यहाँ पर यहाँ तक बहती चली आती है। वहाँ पर्वत के तट में जिह्विका अर्थात प्रणाली है जो अनेक प्रकार के मणिमय है, जिसको हम गोमुख भी कहते हैं। नदियों की उत्पत्ति के स्थान में यहाँ कुछ या तो आकार बनाते हैं, परंतु ये एक्चुअली नेचुरल आकार यहाँ बना, ये थोड़ा ऐसा जो त्रिकोणी यहाँ बताए ना नदी के दोनों ओर बताए ब्राउन कलर में, ये क्या है ये कैसी रचना है उसको देखते हैं अभी हम, कैसी बनी है वो तो मणिमय यानी रत्नमयी है। यह दो कोस लंबी और दो कोस ऊंची है और वृषभाकार अर्थात गोमुखाकार है, 6.25 योजन चौड़ी है। ये जो यहाँ ये इसको प्रणाली कहते हैं, यहाँ पर ये पर्वत के एंड में यहाँ जो बनी है जिसमें से गंगा नदी बाहर की ओर जंप होकर नीचे गिरेगी, आपके यहाँ भी देखते हैं ना, ये कोई आपका फॉल है तो क्या होता है, नदी बहकर आती है, पर्वत के एज तक आती है, फिर आगे होकर नीचे गिरेगी। ऐसे यहाँ पर भी पहले ये गोमुख का हम वर्णन देखते हैं। इस प्रणालिका, प्रणालिका ने ये जो गोमुखा का रचना है, उसके मुख, कान, जीभ और नेत्र, इनका आकार तो सिंह के समान है और भौम मस्तक आदि का आकार गाय के समान है। यानी वो पर्वत में ही ऐसी रचना स्वयं वो बनी हुई है। यहाँ हिमवान पर्वत को छोड़कर 25 योजन आगे जाकर गंगा नदी 10 योजन चौड़ी होकर नीचे गिरती है। उसका प्रवाह कितना बड़ा है जब गिरती है, 10 योजन चौड़ा। तो वहां से पर्वत के ऊपर से नीचे पर्वत को लगते हुए नहीं बहेगी, फोर्स से आती है तो ऐसा लंबा जाके 25 योजन दूर जाके फिर नीचे स्ट्रेट होकर नीचे गिरेगी। हाँ, हम देखते ना यहाँ फॉल है तो उसके पीछे तो हम जा भी सकते हैं अंदर गुफाओं में। यहाँ पर भी कुछ ऐसी रचना में लोगों को वहाँ जाने के लिए भी रास्ता बनाते हैं ना, तो ये भी ऐसा 25 योजन दूर होकर नीचे गिरती है। कहाँ गिरती है उसको कहते हैं। तो ये यहाँ ये गोल बताया है ना, ये कुंड है पर्वत के नीचे, हिमवान पर्वत के मूल में 10 योजन ऊंडा और 60 योजन चौड़ा गोल कुंड है। उस कुंड के मध्य में जल से आधा योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा गोल द्वीप है। देखो यहाँ पीला दिखाई सेंटर में, एक तो ये कुंड है और उसके सेंटर में एक द्वीप है, आइलैंड जैसा आपके यहाँ होते हैं ना टापू। उस द्वीप के मध्य में 10 योजन ऊंचा वज्रमय पर्वत है। वह पर्वत नीचे 4 योजन, मध्य में 2 योजन और ऊपर 1 योजन चौड़ा है। उस पर्वत के ऊपर श्री देवी का मंदिर है। यहाँ पर भी, वहाँ तो ऊपर देखे थे हमने उस कमल में भी, जो नीचे 3000 धनुष, मध्य में 2000 धनुष, ऊपर 1000 धनुष चौड़ा है, उसमें श्री देवी का महल है। उस देवी देव श्री देवी के मंदिर के ऊपर कमल है, उसकी कर्णिका पर सिंहासन है और वहाँ जिनबिंब विराजमान है। उसके ऊपर गंगा नदी पर्वत से गिरती है। कुंड के बीच में वो महल है, महल के ऊपर वो तो सिंहासन, कर्णिका, सिंहासन सब कुछ है। मानो जिनबिंब का अभिषेक करती है। इस जिनबिंब को जटायुक्त कहा है। अन्य मती कहते हैं शंकर की जटा से गंगा अवतरण हुआ है। वहाँ उसके ऊपर मस्तक पर गिरकर फिर नीचे नदी बहती है कुंड में, और फिर कुंड से निकलकर वो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। यहाँ पर भी देखो ये पूरा जो ये बीच में पर्वत दिखा है ना यहाँ पर बर्फ क्षेत्र में, इसका नाम है विजयार्ध पर्वत। ऐसे विजयार्ध पर्वत भरत में भी है, ऐरावत में भी है और हर विदेह में, जितने विदेह हमने देखे ना, एक एक मेरु संबंधी 32-32, हर एक में अपना अपना विजयार्ध पर्वत होता है। विजयार्ध है ना, उस देश को आधे में डिवाइड करता है, वो विजयार्ध है। तो ये यहाँ से बहती हुई नदी, गंगा नदी यहाँ आती है और उसकी गुफाओं में प्रवेश करती है उस विजयार्ध पर्वत। वो भी बहुत, देखो यहाँ आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ नदियाँ पर्वत से गिरती है वहाँ वहाँ ऐसी ही कुंड, द्वीप, देवी के मंदिर, जिनबिंब की रचना है। यानी ये तो हमने गंगा नदी की बात देखी, सिंधु नदी के भी ऐसे ही होगी। गंगा कुंड से निकलकर गंगा नदी दक्षिण दिशा में सीधी जाकर विजयार्ध पर्वत की खंड प्रपात नामक गुफा में प्रवेश करती, उस गुफा का नाम है खंड प्रपात। ऐसे अभी वो ठीक है, वो छोड़ो उस पैराग्राफ को। इस पर्वत की चौड़ाई, कौन सा विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई 50 योजन है, उतनी ही उस गुफा की लंबाई है। क्या कहना चाहते हैं, ये यहाँ से यहाँ लेकर ये पर्वत की चौड़ाई कितनी है, तो कहते 50 योजन। तो गुफा में 50 योजन दूर तक गंगा नदी ये गुफा में से बहती है। गुफा की ऊंचाई 8 योजन और चौड़ाई 12 योजन है। गुफा के उत्तर तथा दक्षिण द्वार में 6-6 योजन चौड़े 2 वज्रमय कपाट है। गुफा के पूर्व और पश्चिम दीवार के निकट 2 कुंड है, उनमें से उन्मग्ना और निमग्ना अर्थात उन्मग्न जला और निमग्न जला नामक 2 नदियां निकलती है। देखो ये क्या है, ये अंदर ये गुफा के अंदर ही दो नदियां यहाँ साइड से बहती हैं, जो आगे जाकर फिर गंगा में ही मिलती है। नाम क्या है उनके? उन्मग्न जला और एक का नाम है निमग्न जला। ये नदियों के नाम आप सब पढ़ेंगे, शायद आपने वो भरतेश वैभव आदि अगर पढ़ा होगा तो। जब चक्रवर्ती निकलते हैं तो इन गुफाओं में से जाते हैं। ये तो इनके द्वार होते हैं और बंद होते हैं। उनके पास तो ये जो रत्न का एक वज्र होता है, क्योंकि अनेक निधियां प्राप्त है ना उनके, तो उसके द्वारा वो खोल सकते हैं और जा सकते हैं। सारा सैन्य इन गुफा में से जाता है। तो यह नदियां कैसी है? उन्मग्न जला। कुछ भी अंदर पड़े तो हल्की से हल्की चीज भी बाहर फेंकी जाती है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, और निमग्न जला है ना, हल्की भी चीज चली तो अंदर चली जाए, डूब चली जाती है। यानी इन नदियों की ऐसी सहज रूप से पानी की ऐसी परिस्थिति है। आगे लिखा है देखो, अपने जल प्रवाह में गिरे हुए भारी द्रव्य को भी जो बाहर निकालती है, डूबने नहीं देती, अंदर प्रवेश नहीं करने देती, उसे उन्मग्ना कहते हैं। और जल प्रवाह में गिरे हुए हल्के भी द्रव्य को जो डुबावे, नीचे प्राप्त करावे, उसे निमग्ना कहते हैं। यानी ये उन्मग्ना और निमग्ना ऐसे ये दो नदियां हैं। उसके बाद क्या होता है, इस गुफा से बाहर निकलेगी, थोड़ी दक्षिण की ओर बढ़ेगी और थोड़ी ऐसी पूर्व की ओर बहते बहते यहाँ लवण समुद्र को मिलेगी, गंगा नदी। सिंधु नदी ऐसा ही पश्चिम द्वार से निकलेगी, पांचवें विजन जाएगी, नीचे आएगी। यहाँ पर भी एक गोमुखाकार रचना है, यहाँ भी वो सिंधु कुंड है, उसमें से भी यहाँ बहती आएगी। ये गुफाओं में से निकल कर दक्षिण की ओर जाएगी और पश्चिम दिशा में लवण समुद्र को मिलेगी। ऐसे ही ऊपर जो हम देखते हैं ऐरावत है, उसमें ऐसी दो निकलेगी नदियां, उसके नाम क्या है? रक्ता और रक्तोदा। यह है गंगा और सिंधु, रक्ता रक्तोदा नाम है उनके। अब यानी हमने ये बात देखी कि ये पर्वतों के और नदियों के द्वारा इन क्षेत्रों के जो विभाग होते हैं, वहाँ कहाँ कहाँ भोग भूमि है, कहाँ कर्म भूमि, ये हमने देखी थी। अब थोड़ी भोग भूमि की बात देख लेते हैं। ये उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, ऐसे हमने तीन नाम देखे थे। तो ऐसे तीन नाम अलग अलग क्यों पड़े? क्योंकि वहां की जो ऊंचाई है, लंबाई जीवों की, और वहां की जो आयु है, उसका प्रमाण अलग अलग होता है। तो उत्तम भोग भूमि ये निकालना पेज नंबर 150 पर, ये दूसरा पैराग्राफ। उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है, तो उसको कुरुक्षेत्र में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, उसको देव कुरु भी कहते हैं, तो वहां हमेशा ही उत्तम भोग भूमि होती है। परंतु हमारे भरत और ऐरावत में पहले काल में उत्तम भोग भूमि होती है। यहाँ कितना काल लंबा है हमारे यहाँ भरत क्षेत्र, वहां तो हमेशा ही होती है, और भरत क्षेत्र में जब उत्तम भोग भूमि होती है तो उसका काल कितना है? तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष। अब वहां का शरीर की ऊंचाई कितनी है उत्तम भोग भूमि में? 6000 धनुष, यानी 3 कोस। तो कितना खाना खाते होंगे ना, और रोटी कौन बनाता? तो कहते वहां 3 दिन बीतने पर एक बार भोजन होता है, और बद्री फल ने छोटा बेर प्रमाण कल्प वृक्षों द्वारा दिया हुआ दिव्य आहार वहां के जीव ग्रहण करते, और मनुष्यों के शरीर का वर्ण उदय होते हुए सूर्य के समान होता है। अब ये शरीर की ऊंचाई और आयु घटते घटते अंत में, किसके अंत में? उत्तर भोग भूमि के अंत में, पहला काल हमारा यहाँ समाप्त होने को आता है, अभी दूसरा काल शुरू होने वाला है। तब वो 4000 धनुष और हाइट कितनी रह जाती है? 2 पल्य। ये मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट ऊंचाई और आयु है। अब भोजन कितना करते हैं? तो 2 दिन के अंतराल से करते हैं, और कितना? तो बेड़ास खाया, देखा है ना, ऐसे इतना इतना फल होता है, ठीक है, बेड़ा ये हरड़ा बेड़ा होता है ना वो
समझ,
समझना इतना बड़ा
आंवले से छोटा होता है।
हाँ, ये मीडियम साइज का आंवला है ना, इतना होता
है,
जायफल देखा होगा उतने साइज का होता है। मनुष्य संपूर्ण चंद्रमा समान वर्ण युक्त होते हैं। अब ये दूसरे काल का अंत हुआ, अभी तीसरे काल का उत्कृष्ट कितना होगा। शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष और आयु एक पल्ले की होती है। यहाँ एक दिन के अंतराल से भोजन होता है जो आंवले प्रमाण होता है। देखो ये ख्याल नहीं है, जहाँ हाइट बॉडी इतनी थी तो भोजन इतना सा था, अब भोजन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। हाँ, हमारी बात देखो, कितनी बार भोजन करते हैं दिन भर। इस काल में मनुष्य हरित श्याम वर्ण युक्त शरीर वाले होते हैं। तीनों भोगभूमि के जीव मलमूत्र आदि निहार रहित तो होते हैं। आहार तो इतना छोटा है परंतु वहाँ मलमूत्र नहीं होता है, निहार रहित होते हैं। चौथे काल के आदि में यहाँ कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, जहाँ शरीर की ऊंचाई 500 धनुष शुरुआत में एवं आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है और दिन में एक बार आहार होता है। देखो चौथे काल में एक बार आहार की वहाँ पद्धति थी। शरीर पांचों वर्ण युक्त होते हैं और अभी चौथे काल के अंत तक आयु घटते घटते 120 वर्ष प्रमाण और ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण होती है, जो पंचम काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट का प्रमाण है। अभी ये पंचम काल के प्रारंभ की बात, अभी घटते घटते, अभी हमारे यहाँ पंचम काल चल रहा है तो घटते 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 अंत में 2 हाथ प्रमाण ऊंचाई रह जाएगी, 3 फुट, और 20 वर्ष प्रमाण आयु रह जाती है पंचम काल के अंत में। अभी पंचम काल होते हुए कितने दिन बीत गए। अरे महावीर को हुए कितने दिन हुए, 25 हो जो कुछ है। छठवें काल के अंत में ऊंचाई 1 हाथ प्रमाण और आयु 15 वर्ष प्रमाण रह जाती है। पंचम काल में शरीर कांतिहीन रुक्ष मिश्र वर्ण वाला होता है, जीव बहुत बार आहार ग्रहण करता है। ये तो सिद्ध होता है ना हमारे के ऊपर से। छठवें काल में शरीर धुए जैसा श्याम वर्ण वाला होता है, जीव अति प्रचुर वृत्ति से बारंबार आहार करता है। आजकल तो हमें डॉक्टर भी ऐसे उपदेश करते हैं, बार बार खाओ, 3-3 घंटे में खाते रहो। भोग भूमि के जीव मंद कषाय होते हैं, वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। तुर्यांग नाम के कल्प वृक्ष से वाद्य, पात्रांग से पात्र मिलते हैं, भूषणांग से आभूषण मिलते हैं, पानांग से पीने की चीजें, आहारांग से आहार, पुष्पांग से पुष्प, ज्योतिरंग से प्रकाश प्राप्त होता है, ग्रहांग से मंदिर अर्थात ग्रह महल प्राप्त होते हैं, वस्त्रांग से वस्त्र और दीपांग से दीपक मिलते हैं। अभी भोगभूमि कैसी होती है तो दर्पण के समान मणिमय होती है। 4 अंगुल प्रमाण ऊंचे उत्तम रस और गंध युक्त कोमल तृणम से संयुक्त होती है। दूध या मिष्ट रस या जल या मधु समान रस या घृत, घृत यानी घी से पूर्ण ऐसी बावड़ी या सरोवरों से यह भोग भूमि व्याप्त होती है। और भी यहाँ का वर्णन करते देखो। यहाँ माता के गर्भ से युगपत श्री पुरुष का जोड़ा यानी युगल उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें जुगलिया या युगलिया कहते हैं। इनका जन्म होते ही माता पिता दोनों मर जाते हैं। तो क्या माता पिता के बिना ही बड़े होते हैं, क्यों भाई? हम तो मानते हैं कि हमारे बिना हमारे बच्चे का क्या होगा। यहाँ तो लोग पुत्र मुंह में अंधे होकर बड़े से बड़े पाप भी करते हैं, कमाते भी है बच्चों के लिए, अपने लिए तो इनको खाने की भी फुर्सत नहीं है। देखो इसकी चर्चा तो हमने देखी थी, आगे जरा लास्ट लाइन देख लेते। भोग भूमि में युगल जन्मते हैं, जन्म से 7 दिन तक अपना अंगूठा चूसते हैं, आगे 7 दिन तक ऊंचे नीचे होते हैं, अर्थात पेट के बल भूमि पर ऊंचे नीचे होते हैं, रेंगते हैं, फिर 7 दिन लड़खड़ाते हुए चलते हैं, फिर 7 दिन में स्थिर रूप अच्छे से चलने लगते हैं, फिर 7 दिन में कला गुण ग्रहण करते हैं, 7 दिन में यौवन अवस्था प्राप्त करते हैं और 7 दिन में परस्पर दर्शन का ग्रहण होना होता है। यानी ये जुगलिया जन्मते है ना, वही हाँ पति पत्नी होते, इस तरह 49 दिनों में संपूर्णता होती है। अभी समय हो गया, आगे का एक पैराग्राफ पढ़ लेते। देखो, इस दंपति यानी स्त्री पुरुष युगल में दोनों के वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। आपको याद है हमने देखा था उत्कृष्ट जो हड्डी होती है ना, वज्र समान हड्डी और उसका वेष्टन वज्र समान, ऐसे सहनन यहाँ स्त्री को भी और पुरुष को भी होता है। इनके समचतुरस्थ संस्थान होता है, प्रोपोर्शनल बॉडी, संस्थान का अर्थ है आकार। ये मंद कषाय होते हैं इसलिए इन्हें आर्य कहते हैं। पंचेंद्रिय के विषय, अभी सुना ना, पंचेंद्रिय के विषय इन्हें अत्यंत सुलभता से प्राप्त होते हैं, तो भी उनसे तृप्ति नहीं होती, विषयों से अरुचि नहीं होती। यानी यहाँ तो गुणस्थान किसी को सम्यक तो होगा तो चौथा ही होता है, यहाँ कोई व्रत आदि तप वगैरह यहाँ के जीवन के होते नहीं। आयु के अंत में पुरुष छिंग से और स्त्री जम्भाई से मरण प्राप्त कर शरद कालीन मेघवत उनके शरीर का विलय हो जाता है, शरीर का अंश भी पड़ा नहीं रहता। जम्भा यानी योनि, क्या
बोलते गुजरात
में, बगासु बगासु। ये तो हमने पहले बात देखी थी कि यहाँ से जीव तिर्यंच हो या मनुष्य हो, मरकर देवगति में ही जन्मते हैं। सम्यक दृष्टि सौधर्म और ईशान में, मिथ्या दृष्टि बहुनत्रिक में, देखी थी ना पहले हमने बात, बहुत बार सुनी थी। और यहाँ कदली घास से मरण नहीं होता, क्योंकि असंख्यात वर्षों की आयु लेकर गए हैं, तो बीच में वो कल हमने जो देखा था घात होकर जल्दी मरना, ये बात यहाँ नहीं हो सकती। अब हम यही रुकेंगे, क्योंकि जब तीसरा काल समाप्त होने को आता है और वहाँ क्या क्या बातें बनती है और खुलकर कैसे कैसे प्रजा को मार्गदर्शन करते हैं, उसकी बात हम कल देखेंगे। कुबोध भूमि भी है, अच्छा कुबोध भूमि ले लेंगे। अच्छा, वैसे तो वो पाताल का भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे बहुत विषय भी, क्या करें। हाँ लेना चाहिए, आप दिन में 6 घंटे रखते तो हम लेते ना। चलो, 24 भगवान की।